Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Isha Vasyopanishad, presented by Swami Sri Pratyak Bodhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Karma Phal. हम सब हिंदू हैं. हिंदू का तो वेद में और स्वर्ग में और स्वर्ग का बाद वापस आने में भी विश्वास होना चाहिए. तो कर्म मतलब ये जो पूर्व जन्म पुनर्जन्म ये सब है ना, उसमें भी उसमें उसको आप कनेक्शन देखा जाए तो भी नेक्स्ट जन्म में ये जो जितना भी मैं कर्म अभी किया हूं उसका हिसाब से उसका रीति से हमको नेक्स्ट जन्म का प्रारब्ध कर्म मिलेगा और संचित कर्म इतना है इसमें से प्रारब्ध कर्म इतना मिलेगा करके कैसा कौन निर्णय करता है. अगर ऑफिस में आप जो जितना भी काम अच्छा करेंगे अगर एक बॉस नहीं हुआ तो आपको प्रमोशन नहीं मिल सकती है. बॉस होना चाहिए और एवेल्यूएशन होना चाहिए. उसके बाद तो बॉस कहेंगे अच्छा ये तो ये अच्छा ये इतना अच्छा कर्म किया है उसको थोड़ा अच्छा मैनेजर पोस्ट दे दो ये दे दो करके. तो जितना भी जो भी जितना भी कर्म का संगति हो रहा है आगे पुनर्जन्म और रिस जन्म और उसके बाद जो जन्म है वो संगति करने वाला कुछ कॉन्शियस बीइंग होना चाहिए. तो वो कॉन्शियस बीइंग को ईश्वर कह सकते हैं आप. तो ये तो हमारा तार्किक मत का आर्ग्यूमेंट है. तार्किक मत वाला ये नहीं मानते हैं कि ईश्वर है. वेद में ईश्वर का शब्द है इसीलिए ईश्वर है करके नहीं मानते हैं. उनको सब लॉजिक चाहिए. तो तार्किक मत वालों भी मानते हैं ईश्वर है. और वैसा हम जैसा हम कहा डिजाइन और पर्पस जो भी क्रिएशन है उसका पीछे डिजाइन और पर्पस है. इसीलिए एक डिजाइनर होना चाहिए एक कॉन्शियस बीइंग होना चाहिए उसको हम ईश्वर. तो जैसा भी आप देखा जाए ईश्वर तो जरूर है. वेद कह रहा है ईश्वर है. युक्तिपूर्वक भी ईश्वर है. तो अभी हमारा प्रॉब्लम यह है इस ईश्वर को कैसा समझने में. हम सृष्टि का हिसाब से ही चलते हैं. सृष्टि में जितना भी है ईश्वर कैसा एक कारण हो सकता है. ईश्वर हम कुलाल है. देखिए कुलाल है वो घट बनाता है. तो जब घट बनाता है उसको उसको घट बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए. मिट्टी चाहिए और मिट्टी चाहिए वो सब चाहिए. तो वो सब होने से भी घट अपने आप नहीं बनता है. कुलाल का आवश्यकता भी है. और कुलाल भी ऐसा एक कुलाल होना चाहिए उनको वो उसका वो कुलाल घट बनने का पढ़ाई पूरा हो चुकी वैसा एक कुलाल चाहिए ना. तो उनका ज्ञान चाहिए. कुलाल का घट बनने का ज्ञान भी चाहिए. तो ऐसा हम बोल सकते हैं जो भी सृष्टि है वो सृष्टि बनाने के लिए उपादान कारण मिट्टी जैसा उपादान कारण होना चाहिए और निमित्त कारण भी होना चाहिए. निमित्त को हम ज्ञान इंटेलिजेंस कह सकते हैं और उपादान को हम मटेरियल कह सकते हैं. मटेरियल चाहिए और मेकर भी चाहिए. अगर इंग्लिश में बोले मटेरियल चाहिए मेकर भी चाहिए और मेकर को ज्ञान भी चाहिए वो होना चाहिए. तो इस सृष्टि को सृष्टिकर्ता ईश्वर कैसा ऐसा कुलाल जैसा एक कारण अगर बना तो ईश्वर को ईश्वर ये सृष्टि का निमित्त कारण ईश्वर अगर हुआ तो मतलब ईश्वर का ज्ञान है सृष्टि ऐसा होना चाहिए करके ज्ञान है करके हम ले लिया तो उपादान कारण क्या हो सकता है. एक संशय है. उपादान कारण अगर क्रिश्चियन रिलीजन में अगर गया तो उन्होंने कहेंगे गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड फ्रॉम नथिंग. शून्य से दुनिया को बनाया करके वो कहेंगे. ऐसा हो नहीं सकता है. ये विरुद्ध है. युक्तिपूर्वक नहीं है. शून्य से शून्य ही आता है. शून्य से कुछ नया कुछ नहीं आ सकता. तो उपादान कारण होना चाहिए. मैटर हैज टू बी देयर टू बिकम इनटू टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू और गेट मैनिफेस्टेड इनटू सम अदर थिंग. तो उपादान कारण होना ही चाहिए. अगर उपादान कारण है मगर उपादान कारण ईश्वर से अलग करके आप बोला तो वो उसमें भी प्रॉब्लम है. ईश्वर के अलग उपादान कारण अगर हुआ तो उसका प्रॉब्लम यह हो सकता है वो उस उपादान का वो उपादान उपादान को कौन बनाया और वो उपादान जहां है उस आकाश को कौन बनाया, तो ऐसा प्रश्न पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। तो उसको उसको बनाने वाला भी होना चाहिए, उसका उपादान कारण भी होना चाहिए, ऐसा ऐसा चलते रहेगा, मतलब इसका एंड कंक्लूजन नहीं होगा। तो इसीलिए उपादान कारण, हमारा हिंदू मत में उपादान कारण भी ईश्वरी है, ईश्वर निमित्त कारण भी है, ईश्वर उपादान कारण भी है। एक बहुत बढ़िया एक बात है, इसी वजह से हम हिंदुओं को और सबको देवता मानता है। हिंदू को ऐसा लोग पूछते हैं ना, आप हमको तो एक भगवान है, उनका नाम ये है वो है करके, आपका ऐसा एक भगवान है करके हिंदू लोगों को पूछते हैं लोग। उसका आंसर है, हमको सिर्फ एक भगवान नहीं है, हमको सभी भगवान है। वी डोंट हैव वन गॉड, वी हैव ओनली गॉड। यही आंसर है। तो ये क्यों ओनली गॉड, क्यों ओनली गॉड? इसीलिए ईश्वर निमित्त और उपादान कारण दोनों बन गए। बाकी मत में ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं मगर उपादान कारण नहीं मानते हैं। वो मत वाले बोलेंगे ईश्वर स्वर्ग में बैठ के वहां से सृष्टि पैदा किया। स्वर्ग में बैठ के सृष्टि पैदा किया तो स्वर्ग को कौन बनाया करके एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं। अगर स्वर्ग को कौन बनाया, स्वर्ग बनाने के समय ईश्वर कहां था और उस जगह को कौन बनाया, ऐसा प्रश्न को उत्तर नहीं है उनका पास। तो हमारा हिंदू मत में उसका उत्तर भी है, और ऐसा एक हिंदू लोग इतना भक्त है उनको सब ईश्वर हो गया। तो सब ईश्वर होने की वजह से उनका ईश्वर उनका अलग कभी भी नहीं है। ये बहुत बढ़िया एक चीज है। मेरा जितना भाई बहन है, तीन भाई है मुझे, और तीन भाई को दो बच्चे हैं, और बचपन में मतलब अभी भी बहुत छोटा है, जब भी घर मेरा मतलब मेरा माँ बाप के घर आते हैं वो पूजा रूम ढूंढते हैं, सीधा पूजा रूम चला जाते हैं और वहां कुछ नहीं करते, ऐसा देखते रहते हैं और थोड़ा घंटी लेके उसको उसके साथ खेलते हैं। हमारा सब बहुत हिंदू सब हिंदुओं को लोग घर में पूजा रूम तो होगा, अगर पूजा रूम नहीं होगा तो भी एक क्लासेट एक कबोर्ड में पूजा होगा, और बच्चा लोग को इतना अट्रैक्शन है वो जगह। उसका मतलब यह है अनायास बिना प्रयास से बचपन से हमारा हिंदू का बच्चा भगवान का नाम लेना है, भगवान का देखना है, भगवान का अनुभव भाव वो भाव बन जाते, इतना आसान से बन जाते, इतना आसान से बाकी मत वाले लोगों बच्चों के मन में भगवान का स्फुरण नहीं होती है ऐसा इतना इजी से। तो बहुत बढ़िया है हमारा मत ऐसा देखा जाए तो निमित्त और उपादान कारण बन गया ईश्वर। तो ईश्वर का ईश्वर बिना और कोई नहीं है। तो अगर देखिए अभी इस मंत्र में ईशावास्यम इदम सर्वम करके दिया है, ईशावास्यम वास्यम मतलब आच्छादनीयम करके दिया है। आच्छादनीयम का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा कवरिंग एनक्लोजिंग। ऐसा मैं एक बात पूछता हूं आपसे, आसान चीज है क्या ईश्वर ईशावास्य सब ईश्वर से आच्छादनीय है करके ऐसा देखने आसान चीज है क्या? आपको ऐसा दिखता है? नहीं दिखता। अभी तो मैं कहा ईश्वर निमित्त और उपादान कारण दोनों भी कह दिया मैंने। तो जब ईश्वर निमित्त और उपादान कारण हो गया तो ईश्वर के बिना और कुछ नहीं है, रह नहीं सकता है। तो तब तो आप तो ईश्वर का अनुभव तो सभी हमेशा के लिए हो रहा है। जिसको भी देखिए जिसको भी किए ईश्वर का अनुभव ही हो रहा है, मगर फिर भी ऐसा दिया है इस उपनिषद में आच्छादनीय आच्छादन करना चाहिए करके दिया है। मतलब इसका मतलब थोड़ा उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है तो इसीलिए उपनिषद भी कह रहा है मुश्किल करके, इसीलिए उपनिषद भी कह रहा है अब तो आच्छादनीय है, आच्छादनीय करना चाहिए करके, करना पड़ेगा करके ऐसा कह रहा है। तो ऐसा ऐसे इट इज अ रूल ऐसा करके दे रहा है। रूल नहीं है, हम देखते हैं। तो ईशावास्यम हम एक बात पूछते हैं आपसे, ये तो वेदांत का एग्जाम्पल है, हमेशा ये एग्जाम्पल बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप रज्जू में सांप अगर देखा तो हम आप वो रस्सी का सांप आच्छादनीय किया कि नहीं? रस्सी इज एनक्लोज, रस्सी का आप पूरा आच्छादन कर दिया सांप से, देखिए आपका वो आच्छादन करने का पावर है आपके पास है ना, इसलिए आप आच्छादन कर दिया रस्सी का सांप के, देखिए रस्सी वहां सांप नहीं, जो नहीं है उसको आप आच्छादन इतना आसान से कर लिया है ना, तो वो शक्ति तो आपके पास है, आच्छादन करने का शक्ति तो आपके पास है। तो मगर अब दूसरा प्रश्न ये होगा, आप असल में तो रस्सी ही है, सांप नहीं है वहां, तो आप आच्छादन सांप से आच्छादन कर दिया उसको, सांप कहां है? सांप सीधा कहना चाहिए तो आपका बुद्धि में है, अज्ञान तो बुद्धि में है, तो आपको बुद्धि में है करके कहना है। सांप आपका बुद्धि में है, सांप का सामग्री सब आपका बुद्धि में है, सांप का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों आप बन गई है ना, तो दोनों आप बन गई, सांप का निमित्त कारण बने के उपादान कारण बन के आपका बुद्धि निमित्त कारण भी बना, और अज्ञान बुद्धि में जो अज्ञान है वो उपादान कारण बन के तो आपका सांप दिखाया। तो प्रॉब्लम जहां है सॉल्यूशन वहां वही अप्लाई करना है ना। देखिए अगर मेरे को चोट यहां लगे तो जो भी ऑइंटमेंट लगाना है यही पे लगाना है, तो अगर प्रॉब्लम बुद्धि में है तो क्या प्रॉब्लम को जो भी सॉल्यूशन है वो बुद्धि में ही अप्लाई करना चाहिए हमको। तो अज्ञान बुद्धि में है तो बुद्धि को ही हम डील करना चाहिए। तो उसका मतलब यह है जो आचार्य बुद्धि जैसा आचार्य किया है, बुद्धि जैसा आचरण किया है, उस बुद्धि का वो आचरण करने का शक्ति है, अगर उस बुद्धि को ठीक ठीक वो एरर जो एरर है वो सब निकल गया तो आप उसी सांप में रस्सी का आच्छादन करेंगे। आप रस्सी तो असल में है, वो बहुत अनायास है ना आच्छादन करेंगे आप, है ना। तो बुद्धि का ज्ञान हो गया तो वहां रस्सी बन गया, वो रस्सी तो है, रस्सी आपको दिखेगा। तो इसी तरीका से अगर आपको बुद्धि में ना ज्ञान ठीक हो गया तो ईशावास्यम अनायास न हो जाएगा ज्ञान हो गया तो ईश्वर से आच्छादनीय अनायास न हो जाएगा। इसके लिए कुछ प्रयत्न का भी जरूरी नहीं है, तो जस्ट बैठ के सुनना है। कल भी स्वामी जी बताएंगे, और बढ़िया बताएंगे स्वामी जी। तो ऐसा वेदांत सुनने से ही हो जाएगा। ये तो देखिए वेदांत सुनने से, इसीलिए शंकराचार्य ने वो पहले जो भाषण दिया है उसमें बार बार ये कह रहा है हमारा स्वरूप जानने के लिए ज्ञान बिना और कोई उपाय नहीं है करके, उसके बाद कुछ करने का नहीं है। अगर करने का हो ऐसा करके अब हम बैठा है तो आपको ऐसा एक वृत्ति बन जाएगा मन में, अगर ये तो ब्रह्मचारी कुछ बोल रहे हैं, ये अच्छा थियरी है, उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस करना है, ऐसा इस वृत्ति से आप गए तो पूरा लाभ उठ नहीं सकते, पूरा फायदा आप ले नहीं सकते आप। तो अगर केमिस्ट्री में लैब में कुछ चीज, अगर न्यूयॉर्क, अगर मैं न्यूयॉर्क का बात अगर मैं कहा तो न्यूयॉर्क एक जगह है, उसके लिए ज्ञान चाहिए पहले, कैसा जाना है, कौन सा फ्लाइट पकड़ना है, सब ज्ञान चाहिए, उसके बाद अनुभव भी बाद में होगा न्यूयॉर्क का। आत्मा और आपका ज्ञान के लिए, आपका अनुभव के लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं है। सिर्फ ज्ञान एक ही काम करेगा, क्योंकि आप तो हमेशा आपके पास है, कहीं जाने का इन टाइम जाने का नहीं है, इन स्पेस जाने का नहीं है। तो इसीलिए कह रहे टेक्निकली देखा जाए तो भी आत्मा ज्ञान के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए ज्ञान एक ही उपाय है और किसी का उपाय जरूरी नहीं है। एक बार एक महात्मा ने, हमारा गुरुजी ने एक एग्जाम्पल भी दिया, वो फ्लाइट में जा रहा था ऋषिकेश तक, मतलब देहरादून तक जा रहा था, उनका पास में और कोई बैठ रहा था, हमारा गुरुजी को देख के वो कहा आप तो साधु जैसा लग रहे हैं, मैं वहां जाके, स्वामी दयानंद सरस्वती का बात कर रहा हूं मैं, अभी जो है स्वामी दयानंद सरस्वती उनका बात, उनसे पूछा मुझे स्वामी दयानंद सरस्वती मिलना है करके, जो सामने बैठा है फ्लाइट में उन हमारा दयानंद सरस्वती स्वामी से ही पूछा मुझे स्वामी दयानंद सरस्वती से मिलना है, आपको मालूम है क्या करते तो उनका आश्रम जाने का विमर्श में। देखिए वो जैसा पूछा उनको क्या आवश्यकता है, वहां सिर्फ ज्ञान आवश्यकता है, मैं ही स्वामी दयानंद सरस्वती करके, उसके बाद वो प्रयत्न कुछ करने का आवश्यकता है क्या? नहीं, ऐसा ही आत्मा आत्मा का बारे में आप तक बारे में बस ज्ञान आपको ठीक ठाक पक्का हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसीलिए वेदांत ऐसा शांकर भाष्य सहित पढ़ना है, मतलब जो शांकर भाष्य पढ़ा है उनसे सुनना है वेदांत। स्वामी प्रतिभुवन स्वामी जी 40 साल 30 साल इसी में है, मैं सिर्फ 3 साल पढ़ा हूं, वेदांत सिर्फ 3 साल ही पढ़ा हूं मैं। तो आप ये कल और परसों उन्होंने क्लास लेंगे, आप रोज आइए, आके उसका लाभ उठाइए आप। तो ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन बुंजीता मां कृत कस्य सुद्धनम। स्वामी जी से मैंने पूछा, स्वामी जी मैं कितना तक लूं करके, स्वामी जी ने कहा तुम मंत्र शुरू कर दो और जितना तक जाएगा जाएगा। मुझे मतलब उसमें उतना कंफर्टेबल फील नहीं किया, इसीलिए कि यह सब बहुत मतलब फर्स्ट लाइन में ही इतना मीनिंग है, मैंने जितना कहा और आपको इतना मतलब मिल सकती है। तो अगर मैं शुरू किया तो स्वामी जी आके तो अच्छा नहीं रह करके कहा, मगर फिर भी मैं जितना भी कहा वो मेरा अनुभव है, मतलब वो मेरा गुरुजी से सुनकर मुझे जो आकार हुआ वो आपको शेयर कर रहा हूं, जिससे आपको भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिले और आप वेदांत पढ़ने में मन लगे। थोड़ा बहुत भाष्य भी देखते हैं यहां, और क्या 15 मिनट है, थोड़ा भाष्य भी देखते हैं। तो ईश्वर शब्द का आजा 10 मिनट बाकी, ठीक है। तो ईश्वर को तो हम अभिन्न निमित्त उपादान कारण मान लिया, हाँ अभिन्न निमित्त उपादान कारण मान लिया ईश्वर को, तो ईश्वर बिना और कुछ नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। तो और कुछ उपाय नहीं है, और कुछ रास्ता नहीं है, ईश्वर ही सभी होना चाहिए, तो ऐसा हो गया। तो ईश्वर से आच्छादनीय होना तो ईश्वर से आच्छादनीय मतलब सभी ईश्वर ही है, ऐसा हम ले सकते हैं। यत्किंच जगत्याम जगत, हमको हमेशा जगत शब्द का जब ईश्वर सभी जगत करके हम जब सुनते हैं हमको लगता है हाँ ईश्वर तो सारा जगत है हमको छोड़ के ऐसा लगता है, ये ना लगता है ना, हमको छोड़ के भी नहीं कहते हैं मगर हमको ऐसा लगता है हाँ ईश्वर तो सब है। अरे ईश्वर तो सब जब बोलेंगे आप, ईश्वर आपका शरीर भी है, आपको मन भी है, आपका बुद्धि जो सोच रहे वो भी है, सभी है, तो ईश्वर छोड़कर और कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है। तो आपको अभी आप कौन है अभी प्रश्न उठना चाहिए, अनायास है ना अभी उठेगा प्रश्न, ईश्वर छोड़ के और कुछ नहीं हो सकता है। यत्किंच जगत्याम जगत है, जगत्याम जगत एक पद है, यत्किंच विदाउट लिविंग एनीथिंग, कोई भी छोड़ा नहीं है, सब मिलके पूरा जगत ईश्वर ऐसा बन गया, तो आपका शरीर भी ईश्वर बन जाएगा, मन भी ईश्वर बन जाएगा। तो इसमें मैं कौन हूं ये ठीक प्रश्न है, मैं कौन हूं करके अभी आप पूछ सकते हैं। इतना तो ज्ञान होने के बाद अब मैं कौन हूं पूछने का, कोई कोई मत में कहते हैं ध्यान जो जिनके ध्यान का प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं वो बोलते हैं आप चुपचाप कुछ सुनने का जरूरी नहीं है, बहुत सुन लिया आपने, बहुत थियरी हो गया, आप चुपचाप बैठ के ध्यान करो। क्या ध्यान करो, मैं कौन हूं ऐसा ध्यान करो करके। अगर मैं कौन हूं और ध्यान कहां होगा, आपका बुद्धि में ही होगा, आपको बुद्धि में जो प्रश्न हो रहा है उसके जवाब तो बुद्धि ही देंगे। बुद्धि में अगर ज्ञान शास्त्र अनुसार विचार ज्ञान नहीं हुआ तो उस बुद्धि से क्या जवाब आएगी, मैं कौन हूं पता नहीं, मैं कौन हूं पता नहीं, ऐसा ही जवाब आएगी। ये जवाब थोड़ा ठीक है, कभी कभी उल्टा पुल्टा जवाब भी आ सकते हैं, मैं वो हूं मैं सब हूं, ऐसा करके कुछ अनडाइजेस्टेड शास्त्र के वजह से कुछ बैड उत्तर भी आ सकते हैं। तो इसीलिए वो मैं कौन हूं प्रश्न आप तब पूछेंगे, जब पूछेंगे तब आपको थोड़ा शास्त्र विचार हो गया, तब उसके बाद मैं कौन हूं करके पूछना चाहिए। और मैं कौन हूं उत्तर भी शास्त्र ही दे सकते हैं, शास्त्र ही तो दे सकते हैं, क्योंकि ये आत्मा ब्रह्म शब्द मैं ब्रह्म हूं मैं आत्मा हूं करके शास्त्र ही तो कह रहे हैं। देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर करके एक वर्ड है ना, आपको मालूम है वो क्या, कंप्यूटर साइंस का वर्ड है सॉफ्टवेयर करके, तो सॉफ्टवेयर करके वो जो वर्ड है वो उसका अर्थ कंप्यूटर सब्जेक्ट में ही ढूंढना है, कंप्यूटर जो जानता है उनके पास ही उनका अर्थ मिलेंगे। जैसा आत्म शब्द ब्रह्म शब्द आत्म जीव ब्रह्म ईश्वर शब्द ये सब शास्त्र ही हमको बता रहा है, तो शास्त्र में ही ढूंढने का मैं का अर्थ क्या है, मैं कौन हूं करके ऐसा शुरू करने। मैं ऐसा ये नहीं कह रहा हूं आप शास्त्र सिर्फ शास्त्र पढ़ते रहो, उसका व्याकरण पढ़ते रहो, ऐसा नहीं कह रहा मैं। उसमें व्याकरण भी है, पहले शुरू में ही व्याकरण शंकराचार्य व्याकरण से ही शुरू कर रहा है शास्त्र को, तो है। मगर ये इतना ही कह रहा हूं, तो जितना भी आपका विचार है आपका असल स्वरूप बारे में, वो विचार का सामग्री शास्त्र ने ही आपको दिया और उसका उत्तर भी शास्त्र में ही आपको देंगे। तो यत्किंच जगत्याम जगत, एक जगत सर्व जगत, पूरा जगत आपको मिलके, आपका मिलके सब, तो इसमें मैं कौन हूं करके एक प्रश्न आ सकती है। तो इसका उत्तर है आ रहा है, उसका पहले मैं एक चीज पूछूंगा आपसे। जो भी जगत आपको पहचान हो रहा है आपका आंख के द्वारा, कान के द्वारा, जितना भी जगत को आपको उपलब्ध हो रहा है, वो कहां उपलब्ध हो रहा है, वो कहां प्रकट हो रहा है आपको? बुद्धि में प्रकट हो रहा है ना, बुद्धि में ही प्रकट हो रहा है। ये नहीं कह रहा हूं कि बाहर कोई कुछ नहीं है, अंदर ही सब, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। अंदर ही ढूंढो अंदर, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। टेक्निकली पूछ रहा हूं, जितना भी चीज आपको दिखाई पड़ रहा है वो बुद्धि में तदाकार वृत्ति बनना चाहिए, तभी तो आपको उसका ज्ञान मिलेगा। अगर गट लिया तो पॉट का वृत्ति है, अगर मैं ये पॉट जानता हूं करके कैसा समझना पड़ेगा? वो बुद्धि में वृत्ति बनना चाहिए, तो बुद्धि में ही सब वृत्ति बन रहा है। जब बुद्धि में सब वृत्ति बन रहा है तो एक बहुत बढ़िया चीज आप बता के मैं मेरा प्रवचन को पूरा कर दूंगा। तो अभी देखा ईश्वर निमित्त उपादान कारण करके, और हम अभी कहा आपको जो भी कार्य दिख रहा है, जितना भी कार्य दिखाई पड़ रहा है आपको, वो कार्य सब बुद्धि में उपलब्ध हो रहा करके। तो एक बात बताइए आप, कारण जो है वो कार्य से बिना रह सकता है? बहुत आप थोड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसलिए जवाब ठीक ठाक अच्छा जवाब दे रहे हैं सर। कारण का बिना नहीं रह सकते, घट मिट्टी का बिना रह सकता है? आप अच्छा है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते है। आप अगर आप मैं आपको कहा तो एक घट को आप मन में इमेजिन किए करके, मतलब कल्पना करके आप क्या कहते हो, वो कल्पना को भी मिट्टी चाहिए आपको, कल्पना मिट्टी चाहिए आपको, ऐसा हो जाती है। तो कारण जहां है, कार्य जहां है वहां कारण होना चाहिए, है ना। देखिए कार्य सब आपका बुद्धि में उपलब्ध हो रहा है, कार्य सब आपका बुद्धि में, कार्य जो भी कार्य है आपका बुद्धि में दिखाई पड़ रहा है, तो कारण कहां होना चाहिए? बुद्धि में कारण होना चाहिए, तो कारण भी वहां वही होना चाहिए कार्य भी। तो कारण तो भगवान है, ईश्वर है ना, तो कारण तो ईश्वर है, तो कारण तो ईश्वर है, और ईश्वर कार्य के रूप में आपका बुद्धि में उपलब्ध हो रहा है, तो बहुत बड़ा चीज है वो। तो ईश्वर का उपलब्ध हमेशा, जितना भी कार्य आप देख रहे हैं तो बुद्धि में आपको ईश्वर उपलब्ध हो रहा है, तो हमेशा के लिए आप जितना भी कारण देखो, ये कार्य वो कार्य, बक्षित कार्य वो कार्य, कार्य देखो उसमें ईश्वर उपलब्ध है, कार्य उपलब्ध हो रहा है, तुरंत उपलब्ध हो रहा है, क्योंकि कार्य कारण के बिना नहीं रह सकते, तो तुरंत आपको ईश्वर का उपलब्ध इमीडिएटली हो रहा है, तुरंत हो रहा है। तो ईसा वाष्यम इदम सर्व, मतलब ये जो उपलब्ध जो ईश्वर है ना बुद्धि में, तो उसका आपको इसको ईसा वाष्यम कवर करने का आचरण करके कोई जरूरी नहीं है। बुद्धि में तो जब उपलब्ध होगा तब ईश्वर भी हुआ, जब है आप ईश्वर से आचरणीय हमेशा के लिए है तभी तो उपलब्ध होगा। तो ये तो फैक्ट है, ये प्रैक्टिस करने का चीज नहीं है। ईशावास्यम मिदगुम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये कुछ अभ्यास की चीज नहीं है, ये तो फैक्ट है। बुद्धि में सब कार्य उपलब्ध हो रहा है, वो बुद्धि में सब कार्य दिखाई पड़ रहा है, कार्य कहां जहां है वही कारण भी होना चाहिए, और कारण ईश्वर है, तो बुद्धि में हमेशा के लिए ईश्वर आपका उपलब्ध हो रहा है, तो इसको ही कहते हैं अंतर्यामी। ये बात तो बहुत पाठ में भी अंतर्यामी करके आता है। अंतर्यामी क्या है? ऐसा जो ईश्वर उपलब्ध हो रहा है हमारा बुद्धि में, जो कारण है जिसका बिना कार्य नहीं रह सकता है, उसको ही अंतर्यामी। तो ये कह के मैं मेरा प्रवचन को अभी समाप्त कर रहा हूं। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।